बीमारी से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर्स हैं। सबसे महंगी दवाई लिखी होती है ऊपर, चार तरह के विटामिन लिख देते हैं और पांच तरह के टेस्ट लिखे होते हैं, ये सबके कमीशन सेट होते हैं केमिस्ट से लेकर ऊपर से दवाई होता है। वही वाले डॉक्टर हैं जो करनाल में गोबर खा रहा था, एमडी डॉक्टर।
आंख की दवाई लेने जाओ, विटामिन लिखे होते हैं, पैसे बनाते हैं। यूके में कोई डॉक्टर को हाथ तो लगा के दिखाए पेशेंट?
डॉक्टर वो बढ़िया जो एक गोली में ठीक कर दे। ही डजंट वांट टू गिव द राइट ट्रीटमेंट, ही वांट्स टू गिव देम द फास्टेस्ट ट्रीटमेंट। गांव में बोलते हैं स्टीरॉइड के इंजेक्शन को ताकत का इंजेक्शन।
अच्छा,
डॉक्टर को बुलाया था कि दादी के ताकत का लगा दे, तो बोले भाई सभी के लगा दे, हम तो सारे थोड़े ढीले से लगा, बच्चों के बूढ़े के,
हंस रहा हूं लेकिन मतलब रोने वाली बात है,
पापा चाचा सबके लिए टांगे सबके लगा रहे हो ताकत का इंजेक्शन और सब घोड़े की तरह घूम रहे हैं उसके बाद 6 महीने तक, ठीक है, सबको पता है जी ताकत आ गई। बताओ आप,
उन्होंने अपनी जवानी खराब की होती है पढ़ाई लिखाई में 10-10-12, और ये सबसे लंबा करियर जाता है और इसकी आउटपुट जो होती है बुढ़ापे में मिड एज में जाकर शुरू होती है। पैसे भी खूब बहाए होते हैं, इंडिया में मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी है। एक ही तरीका है,
आधी बीमारी तो लोगों की वहाँ पे खत्म हो जाती है जब डॉक्टर उसकी पूरी प्रॉब्लम सुन ले।
अगर सामने वाला डॉक्टर ने आपसे फीस ले ली 500 रुपये और वो बोल दे कि मुझे नहीं लग रहा कि ये इन्फेक्शन है, वायरल है, आप 4 दिन रुक जाओ, अपने आप ठीक हो जाए, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, आप ही बोलोगे कि क्या गधा डॉक्टर है यार,
500 ले लिए
दवाई देनी है।
हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। मेरे साथ डॉक्टर अविरल वत्स और मैं प्रयास चौधरी। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स नॉट बीमारी। ठीक है, हिंदुस्तान में मुझे लगता है बीमारी से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर्स हैं।
अच्छा, वो कैसे?
ठीक है, आप डॉक्टरों की लिखी हुई दवाई देखना कभी, ठीक है, सबसे महंगी दवाई लिखी होती है ऊपर।
अच्छा,
उसके बाद चार तरह के विटामिन लिख देते हैं, ठीक है, और पांच तरह के टेस्ट लिखे होते हैं। जग जाहिर बात है कि सबके कमीशन सेट होते हैं केमिस्ट से लेकर ऊपर से दवाइयों तक,
बिल्कुल,
ठीक है। तो ये बातें बोलना कि भैया ये रिसर्च हुई है, ये वाली दवाई मत खाओ, वो वाली दवाई मत खाओ, ये अपने लिविंग रूम में बैठ के ज्ञान पीलने वाली बात है। लेकिन आप अगर एक मजदूर के एंगल से देखोगे ना, वो डॉक्टर ने जो लिख दिया वही है उसका, और डॉक्टर भी दवाई देने से पहले अपना ज्ञान अलग पेलता है, दवाई तो देगा ही देगा, अलग पेलता है कि भैया घी खाते हो कि नहीं खाते हो,
अच्छा
ठीक है, तुमने ये दवाई ली थी, दांत कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, ये
अच्छा,
करते हो।
अच्छा,
डॉक्टर भी इतने साइंटिफिक नहीं है हिंदुस्तान में,
राइट,
सब अपना ज्ञान अलग से लेके बैठे हैं वो, और वो घर पे आके वही वाले डॉक्टर हैं जो करनाल में गोबर खा रहा था, वो एमडी डॉक्टर।
हाँ, सही बात,
ठीक है, वो अकेला डॉक्टर नहीं है जो गोबर खाता है, सबके दिमाग में वो लोकल गंद भरा हुआ है। अब आप बताओ इसमें,
नहीं पहले तो खैर मैं सब ये तो नहीं बोलूंगा कि सब ऐसा करते हैं, वो जनरलाइज करना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। बहुत डॉक्टर्स हैं जो कम होंगे, प्रोपोर्शन में कम होंगे, जो प्रॉपर एविडेंस बेस्ड काम करते होंगे। मैंने प्राइवेट पब्लिक वाली बात इसलिए पूछी कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है ना, उसमें प्रॉफिट मेकिंग भी आती है। आप कहीं भी हो, चाहे US में बैठे हो, कहीं भी हो, मैं एग्जांपल आपको UK की दूं अगर, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मेकिंग नहीं आती क्योंकि मुझे तो सैलरी मिलती है, मुझे तो साइंस पे फोकस करना है बेसिकली, ना मुझे चार्ज करना है ना मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंडिया में डॉक्टरों की बात की आपने, उसमें ना ये मल्टी फैक्टोरियल सा लगता है मुझे। लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अपनी दवाई लेकर ठीक होना चाहते हैं। ये मैं लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखो, डॉक्टरों को तो मैं जो पॉलिसीज़ हैं वो सब है, उस पर तो कुछ बस चलता ही नहीं है मेरा, ठीक है, जो एंड यूज़र है ना, उसको अगर अवेयरनेस ही करवा दूँ कि भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किस वाले के पास कौन सी दवाई खा सकते हो, वो थोड़ी बेटर, ठीक होने का चांस बेटर है। अगर बाकी के वीडियो देखोगे ना, तो उसमें ये भी बताता मिल जाऊंगा आपको कि भाई विटामिन नहीं खाने ऐसे बिना बात के, जो कि जैसा आपने कहा ना, डॉक्टर भर के लिखते हैं इंडिया में, आंख की दवाई लेने जाओ विटामिन लिखे होते हैं, पैसे बनाते हैं। आई टोटली एग्री विद यू, और मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ इस बात के लिए, लेकिन इसमें साइंस का कसूर नहीं है, ठीक है। जो मैं पिछले एपिसोड की जो बात कर रहे थे, उसमें साइंस की बात ये हो रही थी कि ऐसे ऐसे साइंस हमें बेनिफिट करती है, ऐसे हमें उसको सीख के चलना चाहिए। और ये साइंस जो है, ये वही गरीब लोग जो बात कर रहे हो, गरीब भी क्या, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में वैसे साइंस यूज कर लेंगे, है ना। उनको जैसा पहले भी बोला मैंने, फोन कौन सा बढ़िया वाला यूज करना है, साइंस ने लेटेस्ट दिया वो यूज करना है हमें, वो भी कहाँ, वो कहाँ से पता लगता है, वो भी तो पता ही लगता है ना कहीं से कि कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सा कौन सी चेयर बढ़िया होगी हमें खरीदने के लिए, उसमें भी कोई टेक्निकलिटी देखते हैं वो। ऐसा तो नहीं है कि बाबे ने बोली ये ले लो वो ले लेंगे,
नहीं, लेकिन भाई साहब डॉक्टर ने ही लिख के दे दिया कि ये विटामिन लेना है तुझे।
आई टोटली एग्री, वो पूरा गलत है वो, ठीक है,
ठीक है।
डॉक्टर जो ऐसा करते हैं, यही तो, ये तो आपने बड़ी छोटी सी बात बोली, मैं आपको और चार चीज़ें बता सकता हूँ जो डॉक्टर, और वो भी साइंस के जो डिग्री हमने, जो MBBS वगैरह डिग्री की हुई, MD की मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, वो उसी कल्चर का हिस्सा है जिसमें वो कल्चर पूरा फैला हुआ है, है ना। और वहाँ पे डॉक्टरों को ये सब खराब काम करने से रोकने का दो तीन तरीके ही हैं। एक तो ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो अपडेट होती रहनी चाहिए। एविडेंस जो है इतनी तेजी से दुनिया में रिसर्च में सामने आ रहा है, बाकी दुनिया से, इंडिया में वो भी नहीं होता, कि उसको 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 पाते रहने का, उसको अपने आप को अपडेट करने में बहुत एफर्ट लगती है।
लेकिन डॉक्टर तो सारे प्राइवेट चल रहे हैं, सारे के सारे प्राइवेट हैं, उनको सिखाने की, उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी किसकी है?
उनकी अपनी भी है, नहीं सरकार की भी है, सिस्टम्स की है। अगर मैं यहाँ पे UK में काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मैं जाके एविडेंस रिसर्च स्टडी सारी पढ़ूँ फिर देखूँ कि कौन सा अप्लाई होगा नहीं होगा, वो सारी स्टडीज़ को पढ़ के क्या देना है क्या नहीं देना, ऐसी बॉडीज़ बनी हुई हैं और वो बॉडीज़ को पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, कि आप ये देखो जी हमें तो ये चाहिए कि जो जनरल प्रैक्टिशनर GP फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं उनके पास पूरा डाटाबेस होना चाहिए कि ये है, ये एविडेंस है, हर साल का ये चेंज हुआ, आप इसको ऐसे इंप्लीमेंट करो। हमारा, हमारे ऊपर डंडा ये होता है कि आप उसको पढ़ोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, बहुत लोग हैं फिर भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि 100%। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं है जी, और वही डॉक्टर है जिसको पैसे भी कमाने हैं ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा
स्कूल पर पढ़ाने की, नहीं विलायत में छुट्टियां मनानी है हर दो,
वो भी क्यों ना मनाए जी डॉक्टर,
बहुत आगे बढ़ गई।
अरे भाई अगर एक बैंक मैनेजर जो जिसकी सैलरी डॉक्टर से बराबर की होगी वो भी तो ये काम कर रहा है, तो डॉक्टर कहता मैं क्यों ना करूं जी, मैंने इतनी मथापच्ची करी है, अपनी जवानी खराब की है पढ़ाई में, तो मैं क्यों ना करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिफाई नहीं कर रहा कि डॉक्टर जो गलत करते हैं वो ठीक है उनको, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर मतलब वो भी एक कोशिश की जाती है कि एविडेंस की बात करिए, लेकिन यही लोग जो अगर आप आयुर्वेद के पास जाते हैं ना, कोई ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं उसका तो फायदा ही नहीं ना होगा, तो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाने का फायदा ही नहीं है।
नहीं, नहीं। क्या आप ये कह रहे हो कि इंडिया में ये सिस्टम है ही नहीं जो यहाँ पर है, कि भैया एक मेडिकल बॉडी है वो लेटेस्ट अपडेट करती है? होगा, जरूर होगा, आई एम श्योर कि वहाँ पे भी होगा सिस्टम, वो डॉक्टर हैं जो उसका रेफर नहीं करते।
नहीं, दोनों चीज़ें हैं, उस लेवल का सिस्टम भी नहीं है जो रेगुलरली एविडेंस बेस्ड चीज़ें डॉक्टरों के लिए उपलब्ध करवाती रहे। ये डॉक्टरों के ऊपर है कि वो कौन सी बॉडीज़ को जाके पढ़ते रहें, इंटरनेशनली पढ़ते रहें, जा जा के देखते रहें, और उसमें कोई डॉक्टरों के सिर पे कोई जैसा मैं कहूँ तलवारें भी
कॉन्सिक्वेंस नहीं उनके उनके ऊपर कोई
खास अकाउंटेबिलिटी है नहीं, उससे फिर वही होता है, ये भी नहीं है। और अगर कोई मान लीजिए पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी, है ना, डॉक्टर के बारे में कंप्लेंट कर दी,
जो कंप्लेंट नहीं भाई साहब हिंदुस्तान में तो पिटाई करते
आ रहा हूँ ना, हाँ मैं उसी पर आ रहा था, कंप्लेंट कर दी मान लो किसी ने, और डॉक्टर को कौन कोई बोलता है, कोई बॉडी आके बोलती है कि आप ये खराब कर रहे हो,
वहीं की वहीं कर देते हैं,
आ रहा हूँ ना, हाँ, क्योंकि वो बॉडी काम नहीं ना कर रही, तो लोगों ने अपने हाथ में लेना चालू कर दिया। यहाँ पे कोई UK में कोई डॉक्टर को हाथ तो लगा के दिखाए पेशेंट, पुलिस आती है, पुलिस को अरेस्ट करके सीधा ले जाती है, और हाथ तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में इमरजेंसी में कोई बोल देना गाली गलौज, उसको पुलिस आके ले जाती है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि पेशेंट को प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है ये बंदे खड़े हैं, हम उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं आपको बथेरे केस, बहुत केस बता सकता हूँ जिसमें डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करा, उनकी उनकी जो GMC की जो हमारी जनरल मेडिकल काउंसिल है जिसकी जो हमें सर्टिफिकेट देती है प्रैक्टिस करने का, जिसके बिना हम नहीं कर सकते, वो हटा देती है आपको, जाओ
नहीं। बट केसेस भी चलते हैं, कंप्लेंट्स भी होती हैं हिंदुस्तान में, ये नहीं पता कि कितना आगे तक बात होती है, कितने लाइसेंस कैंसिल होते हैं।
वो जो ट्रस्ट है ना GMC को, डॉक्टर्स गालियां दे रहे होते हैं कि यार हम आपको फंड करते हैं, हमारे हमारे जेब से जाता है उसको फंड करने का, और आप हमारे ही सर पे तलवार टांगे रखते हो, लेकिन उसका जो ट्रस्ट है ना लोगों में वो बहुत बढ़ जाता है फिर, कि यार एक बॉडी है जो सुनेगी जो करेगी। वो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स परेशान होते हैं कि यार ये GMC हम ही पैसे देते हैं, हमारी बॉडी है वो, ठीक है, हमारी फंडिंग से ज़्यादा चल रही है वो, हमारे सिर पे तलवार रखे बैठी होती है, लेकिन उस तलवार का ये फायदा है कि पेशेंट्स में ट्रस्ट होता है कि ये प्रोसेस से होगा। और एक और लास्ट बात, जो डॉक्टर्स हम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लो प्रयास में मुझे आके कंप्लेंट करे कि मैं आपके इससे खुश नहीं हूँ, है ना, कि आपने वो ठीक नहीं करा मेरे साथ, तो मैं आपको दबा के भेज नहीं सकता। ये मतलब मुझे कूट कूट के भरा गया है कि मैं आपको बताऊं कि प्रयास भाई ये पड़ा फॉर्म कंप्लेंट का, इसको भरिए, और वो पड़ी प्रैक्टिस मैनेजर जो है, जो भी अथॉरिटी हुई, आप उसको जाके दिए, बात कीजिए, कंप्लेंट जरूर कीजिए, उसकी सुनवाई होगी। तो ये इससे क्या होता है, लोगों में फर्क पड़ता है। अब इंडिया में ये सब थोड़ा मुश्किल है।
देखो दो चीज़ें बोलूँगा, एक तो आई नो कि इंडिया में डॉक्टरों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है।
हाँ ठीक है,
सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए है कि सब नोट छापने में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक।
वो भी क्यों छापने
लगे, नहीं पता किस टाइम आके पेशेंट उठा देगा कि भाई उसने संभाल जाएगा
उसका। मैं एक क्विकली बताऊँ, मेरे दोस्त हैं जो दोनों तरह के हैं, जो नोट भी छाप रहे हैं, जिन्होंने ट्राई किया 9 से 5 काम करने का भी। मैंने उनसे बात की क्योंकि मैंने जानना चाहा भी कैसी वर्क लाइफ बैलेंस है। वो बंदा जो 9 से 5 काम कर रहा, सर्जन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा कि यार हम जब अगर 9 से 5 काम करते हैं ना, हम इतना भी पैसा नहीं कमा सकते कि हम अपने बच्चे को ढंग के स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन का क्या सीन है। जब तक आप मोटी फीस वाले स्कूलों में बच्चे नहीं जाते, या जब वो खुद बीमार होते हैं, उनको फिर भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो जो बैकअप सपोर्ट है डॉक्टर्स के बाकी के हिस्सों की ना लाइफ की, वो है ही नहीं। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तो है, बच्चे आपके भी उसी स्कूल में जाएंगे, मेरे भी जाएंगे। हाँ अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप भेज दो प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल बहुत बड़े हैं, तो ये कमाएंगे इसीलिए।
दूसरी एक और बताता हूँ मैं, जो विटामिन वाली प्रॉब्लम तो एक है, ठीक है, उसके तो सिर्फ शायद फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर के पास जाता है ना, वो ये सोच के जाता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी ठीक कर दे। डॉक्टर वो बढ़िया जो एक गोली में ठीक कर दे। और अगर और ये बात डॉक्टर को ही पता है कि जल्दी से जल्दी ठीक करना है, ही डजंट वांट टू गिव द राइट ट्रीटमेंट, ही वांट्स टू गिव देम द फास्टेस्ट ट्रीटमेंट
जो होता है, ठीक है।
नहीं मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ।
अच्छा
आपको सर शायद अंदाजा नहीं होगा, मैंने देखा है रिसेंटली स्टीरॉयड के इंजेक्शन।
हाँ हाँ राइट,
ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर लगाते हैं या जो उनके असिस्टेंट होते हैं कंपाउंडर लगाते हैं। गांव में उसको बोलते हैं ताकत का इंजेक्शन।
अच्छा
मैं आपको बताता हूँ असली बात, जो मैंने मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है। बोले भाई दादी ना उठ नहीं रही थी, दादी से खड़ा नहीं हो जा रहा था, 90 साल की होगी, तो दादी के हर 6 महीने में ताकत का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, ताकत नहीं है, स्टीरॉयड का इंजेक्शन है। बोले उस दिन दादी को उसको डॉक्टर को बुलाया था कि दादी के ताकत का लगा दे, तो बोले भाई सभी के लगा दे, हम तो सब थोड़े ढीले से हो रहे हैं आजकल, बच्चों के बूढ़े के,
मतलब हंस रहा हूं लेकिन मतलब रोने वाली बात है,
पापा चाचा सबके लिए टागे, सबके लगा दिया ताकत का इंजेक्शन।
अच्छा
ठीक है, मिस यूज
क्या, ये तो जहर है,
जहर है। और सब घोड़े की तरह घूम रहे हैं उसके बाद 6 महीने तक, ठीक है, सबको पता है जी ताकत आ गई। बताओ आप
सभी लोग हंस रहे हैं इस बात पे,
कहां जाके रुकेगी ये बात बता। अब
लेकिन इसमें साइंस का क्या कसूर हुआ ये बताओ।
नहीं नहीं साइंस का तो कसूर नहीं है जी, डॉक्टरों का कसूर
है।
हाँ,
हाँ, हाँ। वो मैं देखो, मैं पहली बात तो ये कि आपने गांव की बात करी ना, तो बहुत लाइकलीहुड है कि झोला छाप डॉक्टर होंगे, वो
झोला छाप डॉक्टर होंगे
जो फिर भी जिसने MBBS करी होगी ना, वो थोड़ा वो डरेगा स्टीरॉयड के इंजेक्शन ऐसे ताकत के लगाने में। वो गलतियां बाकी बहुत करते हैं हम लोग
इसमें। सॉरी एक और फैक्टर है, जो ओवर द काउंटर सब कुछ मिलता है ना हिंदुस्तान में।
हाँ, हाँ।
जो झोला साहब डॉक्टर है ना, उसको कहीं लिखाना नहीं है कि मैं कितनी स्टीरॉयड के इंजेक्शन खरीद के लाया था कल।
और वो सबसे सस्ती दवाई है आज की डेट,
सबसे सस्ती दवाई
इंडिया में जेनेरिक बनती है, वो बहुत सस्ती दवाई है। और उससे होता सिर्फ, मैं अगर टेक्निकली बताऊं, उससे होता है कि कोई भी सिम्टम वो मास्क हो जाता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट है, वो बहुत बढ़िया दवाई है जब टाइम पे एक चीज के लिए यूज की जाए, लेकिन छोटे छोटे कोर्सेज में, ठीक है।
और वो शायद 90 साल की दादी के ऊपर ठीक काम चल जाएगा, क्योंकि दादी के तो मास्क ही कर दो तो ठीक है, जब तक हो जाए तब तक दादी
नहीं,
चल
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वही बात आ गई ना, आपने तो वही झोला छाप डॉक्टरों वाली बात कर दी ना, कि दादी जाती है तो जाए लेकिन 4 दिन हंस के चली जाए, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। वो उनके लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है।
सारा काम
अस्तबल बन गया
सर। और मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक साल बाद सुबह सारा गांव इंजेक्शन लगवा के आ रहा है, उसके बाद ठेके पे खड़ा है, और फिर रात को आगे सोता है।
आपने वहां की बात करी ना, मैं यहाँ की बताऊँ आपको। यहाँ पे IV थेरेपी क्लिनिक चले हुए हैं, मतलब आपकी वेन में इंट्रावीनसली विटामिन डाल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत बढ़िया कर देंगे, आपका सब कुछ यहाँ पे खुलेआम चल रहे हैं वो।
तो बताओ यहाँ का सिस्टम उसको क्यों नहीं रोकता फिर?
वही तो कह रहा हूँ ना, अभी इन्होंने चालू कर दिया, ये डॉक्टरों के थ्रू नहीं जा रहा, ऐसे किसी ने मैं कहते कोर्स कर देंगे आईवी लगाने का और आप लगाना चालू कर दो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की नज़र में आएगा तो होगा वो बंद, इसमें तो कोई, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हम नहीं कर रहे ये, कोई भी जैसे आपको आता हो ना आईवी लगाना, आपने शुरू कर, और ये यूएस में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो दो जगह के वीडियो मैंने देखे। लेकिन इंडिया की जो आप बात कर रहे हो वो ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनको उनको डर ही नहीं लगता कि भाई स्टीरॉयड दे रहे हैं, कोई और दवाई दे रहे हैं, इसका नुकसान क्या हो जाएगा, उनको पता ही नहीं है क्योंकि स्टडी नहीं की हुई। एमबीबीएस एमडी वाले जो होते हैं उनको चलो विटामिन दे के वो इसलिए काम शायद चलाना चाहते हैं कि उनको पता है कि उसका उस लेवल का नुकसान नहीं होगा, है ना, पैसे बन जाएंगे लेकिन रिस्क उतना नहीं है। स्टीरॉयड का तो बहुत बड़ा, वो कोई मुझे हैरानी होगी कि अगर प्रॉपर डिग्री वाले जो डॉक्टर हैं वो ऐसे धनाधन स्टीरॉयड देंगे, ठीक है, वो क्रिमिनल है ऑलमोस्ट, तो वो तो मैं थोड़ा
स्केप्टिक
हूँ। लेकिन ये बात जो आपने कही है ये बिल्कुल सच है, गांव में मैं भी बचपन से देखा, मैंने पहले इंजेक्शन ही चलते थे, वो बेटनोसोल की गोलियां चलती थी और झोला छाप डॉक्टर बोलते देखा, जो काम वो स्पेशलिस्ट ने नहीं किया उसका बुखार नहीं टूट रहा था, मैंने तोड़ दिया उसको, वो नहीं पता कि वो तोड़ तो दिया, हफ्ते बाद वही टूटा हुआ आदमी फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पड़ा मिलेगा क्योंकि और बीमारियां पंगा हो गया।
एक स्टीरॉयड फेस भी होता है ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको,
स्टीरॉयड फेस क्या,
स्टीरॉयड से फेस फूल जाता है।
हाँ हाँ वो तो वही है, अगर आप लॉन्ग टर्म खाते रहे तो उससे क्या है कि बॉडी में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फेस जो है वो फूल जाता है, आपके ऑर्गन्स पे असर होता है।
हरियाणा वो गांव वाले तो यूं कहेंगे देखा ऐसी गोली दे दी, गोलमटोल हो गया लड़का,
सेहत बन गई, कोई वो भी नहीं,
ताकत भी आई और गोलमटोल भी हो गया, इससे बढ़िया चीज क्या है?
एक तो ये जो ताकत है ना, एक ताकत और एक इम्यूनिटी, ये मुझे नहीं समझ में आती अपना देसी कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो बंदा बैठा है ना जिसके मसल भी नहीं काम कर रहे वो भी बड़ा ताकतवर हो सकता है जी, और जो पता नहीं हट्टा कट्टा घूम रहा होता है ना उसको कोविड ने ध्वस्त भी करके रखा हो, तो ताकत क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आता। यही अब बात इम्यूनिटी की है, ये गोली खा लो, ये चूरन खा लो, इम्यूनिटी तेज हो जाए। अरे इम्यूनिटी इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, आप किसी एक चीज से कर ही नहीं सकते उसका कुछ। बट एनीवेज आप
मैं एक और जो एमआर की बात आती है,
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव
डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है, उस कमरे में डॉक्टरों पेशेंट से फालतू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाइन बना के बैठे होते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, ठीक है, और वो बैठते ही, वैसे मैं भी मीटिंग में देखा हूँ, बैठते ही सीधा सीधा बात करते हैं, सर ये दवाई है, डॉक्टर एक बार नाम देखता है उसके बाद रख देता है, उसकी तरफ यूँ देखता है कितना पैसा दोगे, ठीक है। वो सिर्फ पैसा पैसा नहीं, आपको छुट्टियों पर भेजेंगे, सारी बातें होती हैं खुल के कि आपकी साल में एक छुट्टियाँ इतनी होंगी, कितना टारगेट हमारा आपके डिस्ट्रिक्ट से, ये होता है जी, ये मतलब पैसा छापने वाली बात होगी ना, ये है ही क्यों,
आपने
है ही क्यों ये सब, ये प्रैक्टिस ही क्यों है, व्हाई इज इट दिस सिस्टम ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गोइंग टू ईच एंड एवरी डॉक्टर, क्योंकि दवाई तो कुछ नई ईजाद करी नहीं है उन्होंने, नई ब्रांड बना दी उसी दवाई
की, हाँ वो तो अलग,
और डॉक्टर को ही पता है
अलग अलग सॉल्ट वो सब बात।
तो ये एमआर का सिस्टम इज टोटली मुझे तो समझ में आता नहीं है
जी,
ठीक है, डॉक्टरों को भी पता है, बट एनीवे पैसा कमाना है भाई, मैं भी पैसा कमाने के लिए,
या पता आपको, आपने यूके में देखा जब आप जीपी के पास जाते हो हॉस्पिटल में तो कोई एमआर बैठा होता है?
नहीं, कोई भी नहीं होता,
बैन है वो, खत्म है यहाँ पे, वो इसीलिए खत्म है कि उसमें एक कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। यूएस जैसी जगह में चलता है, वहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस उस सब के चलते वहाँ पे शायद अभी भी चलता है, डॉक्टर्स को मिलती हैं चीज़ें, यहाँ पे बंद है वो, मैंने आज तक किसी को, हाँ मैं नहीं कह सकता आज तक नहीं देखा, आते हैं लेकिन वो ग्रुप में बिठाते हैं और वो बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपरली जैसा होता है वो चलता है, बहुत रेयरली होता है, मैंने एक प्रैक्टिस में देखा था और वो भी 2-3 साल पहले हो गया। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम डॉक्टर्स की नहीं है इतनी, ठीक है, अगर आप डॉक्टर्स के एंगल से ये चीज़ देखोगे ना तो उसकी मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। एक तो वो उन्होंने अपनी जवानी खराब की होती है पढ़ाई लिखाई में, 10-10-12 और ये सबसे लंबा करियर जाता है और इसकी आउटपुट जो होती है बुढ़ापे में मिड एज में आगे शुरू होती है, ठीक है, पैसे भी खूब बहाए होते हैं, इंडिया में मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी है, ये कुछ जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा, जो गलत है वो गलत है बट वैसे आपको प्रस्पेक्टिव दिखा रहा हूँ। फिर वो उस सोसाइटी में रहते हैं जिसमें उनकी अपनी दवाइयों से लेकर बच्चों की पढ़ाइयों से लेकर माँ बाप की दवाई सारी चीज़ों पर पैसा बहाना पड़ता है, कुछ भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, अगर हम यूके से कंपेयर करें तो हमें कितनी मिल जाती है ना, उस सब के लिए उनको पैसा कमाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में कहने को सैलरीज बढ़ गई हैं लेकिन ऐसी भी नहीं बढ़ी हैं कि उसके ऊपर आप आराम की जिंदगी गुजर कर सकते हो,
और प्लस गवर्नमेंट जॉब में यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस
प्राइवेटली,
प्राइवेट प्रॉब्लम भी इंडिया में।
हाँ,
हालांकि मैं समझता हूँ कि प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों अलाउड नहीं है डॉक्टर को, कि हो क्या गया था कि अगर ये सब अलाउ कर देंगे तो लोग डॉक्टर अपने सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट को ना देखने की बजाय उसका इंटरेस्ट बन जाता था कि मैं उसको अपने हॉस्पिटल में बुलाऊं शाम को।
हाँ,
जैसे
हाँ,
टीचर्स
हाँ.
का भी यही हुआ था, टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, बोलते थे कि भाई कोशिश ये है कि शाम को ट्यूशन पे आ तब पढ़ाऊंगा।
ये ना अपनी थोड़ी कल्चरल चीज़ है, मैं बताऊँ एक एक तरह की, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो ना, दैट इज़ नेवर पेड वेल एनफ। अगर वो पेड वेल एनफ हो जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल चलती रहे ना, तो ये चीज़ें होने के लाइकलीहुड, मैं नहीं कहता नहीं होंगी, लालच किसी में भी कितना भी हो सकता है, लेकिन इसके ना लाइकलीहुड कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपको 8 घंटे काम करके इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप और आपके बच्चे और सबकी जो लाइफ है, ठीक, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बहुत स्टिंकिंग रिच हो, लेकिन ठीक चलती रहे, टेंशन ना हो, तो आप अपना टाइम कहीं और लगाना चाहोगे ना, काम ही थोड़ा करते रहोगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मेरे हिसाब से इशू है, इसमें सिस्टम भी आ जाता पूरे का पूरा। अगर आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, जो आपने डॉक्टरों की मुझे प्रॉब्लम दिखाई ना कि डॉक्टरों की तरफ से क्या, और भी हैं बहुत, वो सारी की सारी बाकी सारे प्रोफेशंस में है, टीचरों में भी है। वो बात तो रही नहीं अब टीचरों में जो पहले गुरु वाली बात होती थी कि जी बड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी लालच कितना बढ़ गया। एडवोकेट्स ले लो आप, पॉलिटिशियंस ले लो आप, पब्लिक सर्विसेज वाले लोग, कोई ले लो, पिक एनीवन,
कमर्शियल हो गया
सब जगह वो। अब अगर आप इसको देखते हो तो डॉक्टर उसी सोसाइटी का पार्ट है, और वही डॉक्टर जब यूके में आगे प्रैक्टिस करते हैं आराम से 9 to 5 करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस बैन नहीं है ना, जो लोग जिनको चाहिए अपना टाइम लगा के करो प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन 9 to 5 आपको ये करोगे तो इतने पैसे हम दे देंगे, दैट इज एनफ। लोग फिर अपना नहीं करते, वीकेंड्स अपने जो जिनको ज़्यादा पैसे कमाने हैं यहाँ पे भी वो करते हैं, वो अपने 7 दिन काम करते हैं जो ने। तो ये जो सिस्टम की बात है ना, जो लोगों के ऊपर जो बात आती है कि भी लोग इसमें क्या करें, मेरे हिसाब से पहले भी वीडियो में मैंने बात की थी, लोगों को पॉलिटिकली अपनी अवेयर होना पड़ेगा कि ये सिर्फ डॉक्टरों को ठीक करने वाला, टीचर्स को, एडवोकेट्स को, ऑफिसर्स को ठीक करने एक ही तरीका है कि इन सब की पॉलिसी जो बना रहा है ना वो ढंग के बंदे चुन के भेजो आप।
नहीं, वो तो है।
अपने धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, रीजन के बेस पे, किसी ने मूछ रखी है, किसी ने दाढ़ी रखी है, यू नो, कोई 56 इंच का है, कोई कौन है, इस पे आप वोट करोगे तो कहाँ से पॉलिसीज बनेंगी।
नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट देखो मैं डॉक्टर की मजबूरी समझता हूँ, ठीक है, उसको भी बच्चे पालने हैं, वो भी चाहता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी जीऊँ अपनी। हर आदमी अगर चैरिटी करनी होती तो डॉक्टर थोड़ा ना बनता हो, ठीक है, बट यार वो ना बिना शक्ल देखे आदमी की, वही दवाई, वही विटामिन, वही टेस्ट पेलते हैं। यार कोई गरीब आदमी आया शकल देख के किसी पे तो रियायत, और शायद मैं नहीं कहता कोई नहीं करता,
हाँ,
बहुत,
नहीं,
बहुत से करते होंगे
एक, हाँ, लेकिन वो जनरली स्पीक,
हाँ, इतने कमर्शियल हो जाते हैं ना, और बेसिकली वो डॉक्टर बहुत कम है जो अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के दिन ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है,
सिस्टम,
हाँ, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बनते हैं ना, यूजली मैंने जो देखा है गुड़गांव में, वो हॉस्पिटल बनता है गाँव की जमीन पे, ठीक है, और उस हॉस्पिटल को ये बताया जाता है, एंड आई थिंक इट इज, पता नहीं स्कीम क्या बोलते हैं उसको, कि दे हैव टू सी एटलीस्ट एक्स नंबर ऑफ परसेंट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन।
हाँ 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 ठीक ठीक
ठीक है, बट भाई साहब आप गुड़गांव के जो 5-star होटल है, हॉस्पिटल है, उसमें किसी गरीब को घुसा के दिखा दो।
हाँ, समझ रहा हूँ मैं।
दे आर ऑल मेंट बाय रूल, अब सरकार ने तो रूल बढ़िया ही बनाया हुआ है ना,
वही बात आ गई ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा,
इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, बट डॉक्टर भी, अब डॉक्टर भी वहां पे हॉस्पिटल में बैठा है, तो जो हॉस्पिटल ने जो पॉलिसी डिसाइड करी है वही कर रहा है, लेकिन यार कुछ तो भाई, डॉक्टर, हर एक डॉक्टर ना अगर यूं कह दे कि भाई मैं तो 5-star हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, लेकिन दिन में एक जरूरतमंद को फ्री में देखूंगा और फ्री की दवाई दिलवाऊंगा।
डॉक्टर की तरफ से बताऊं मैं आपको, ये जो प्राइवेट जो सेटअप हो गया ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिसको हम कहते हैं, उसमें डॉक्टर तो एक मजदूर है बेसिकली, ठीक है, जैसे अगर आप मार्क्स की भाषा में बोले ना, वो प्रोलेटेरियत में आता है कि वो अपनी मेहनत बेच रहा है बेसिकली, और वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन पे मेहनत बेचेगा जो उस हॉस्पिटल के जो मालिक है ना, उन्होंने डिसाइड किए, और वो जो मालिक है उस टाइम पे वो कैपिटलिस्ट बने होते हैं, उनको प्रॉफिट मेकिंग करनी है, उनका सीधा कनेक्शन पॉलिसी मेकर्स के साथ होता है, ऐसा नहीं चलता ना, वही बात होगी ना कि जी देश में करप्शन बहुत है, अरे भाई जो नीचे वाला बंदा है ना उसको बोलो कि यार तू ठीक तरह काम कर, करप्शन भी ऊपर से ठीक होगी, अगर ऊपर से, ये भी सेम चीज़ है मोरल है जो कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ना एथिक्स जो है एथिक्स इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो जो हम बाकी वीडियोस हमने मोरालिटी की भी बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वो एक सबसे ज़्यादा सफ़र करते
बिल्कुल
हैं।
और एक और बताऊं, डॉक्टर कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपको बड़े प्यार से देखेंगे, ठीक है, बट वो डॉक्टर भी आई थिंक साइकोलॉजिकली मेंटली कल्चरली दे डू प्रोफाइलिंग, ठीक है।
ऐसे अक्सर गरीब भी होते हैं डॉक्टर जो समय लेकर प्यार से
नहीं करते हैं, बट वो ना एक तो ढंग से बात नहीं करते आपसे, ठीक है। पेशेंट को ना वो एक हरियाणवी में कहावत है, गुड़ ना दे गुड़ सी बात कह दे, ठीक है ना,
ठीक है।
आधी बीमारी तो लोगों की वहां पे खत्म हो जाती है जब डॉक्टर उसकी पूरी प्रॉब्लम
सुन लेता,
ठीक है। लेकिन डॉक्टर ऐसे एटीट्यूड से कमरे में घुसता है कि तू मत बोल मैं बता दूंगा सब, यार बीमारी सुन ले आदमी की, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे देखा है यूके में, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर आपको टच करने से पहले बोलेगा आई एम गोइंग टू टच यू हियर, यू माइट फील कोल्ड, ठीक है। ऊपर से
कैन आई टच यू
परमिशन मांगता है। अगर अगर लेडी पेशेंट है तो दे विल आस्क यू कि डू यू वांट सम, क्या बोलते हैं उसको, शैपरॉन चाहिए,
अनदर लेडी, कोई और दूसरी साथ में खड़ी करें ताकि आप कंफर्टेबल रहो,
ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, सेफ महसूस करो, ताकि मैं आपको इंस्पेक्ट कर सकूं।
इसका दोनों चीजें हैं, डॉक्टर को अपनी भी सेफ्टी चाहिए होती है,
yeah.
क्योंकि कल को अगर लेडी कुछ बोल दे किसने मेरे साथ ऐसा किया, देयर इज अ विटनेस,
बिल्कुल,
और अगर लेडी विटनेस है तो एनीवे, तो इट इज गुड फॉर बोथ, तो
बट कम्युनिकेट नहीं करते, आई डोंट नो, पढ़ाई लिखाई जब करते हैं डॉक्टर तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन सिखाया जाता है क्या?
नहीं, जब मैंने ट्रेनिंग करी थी इंडिया में कोई भी बात ही नहीं होती थी, मतलब इनफॉर्मली बात हो जाती होगी, जैसे कभी प्रोफेसर से बात हो रही तो उसने बोल दिया, लेकिन अगर मैं याद करूँ ना, हमें तो अपने प्रोफेसर टीचर से डर ही लगता था, वो हमसे जिस हायरार्की से बात करते थे वही हायरार्की लेके सारे के सारे डॉक्टर अपने पेशेंट से बात करते हैं। मेरी अपनी वाइफ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट PGI में हम गए किसी से मिलने, मैं डिटेल क्या बताऊँ, लेकिन स्पेशलिस्ट थे, इतने गंदे, और वो कंसल्टेंट थी, है यहाँ पे मेरी वाइफ, है ना, इतने गंदे तरीके से उससे बात की उसने, इतने, मतलब मैं बता नहीं सकता, आज भी उसको लगता है कि मैं गई क्यों वहाँ पे, और ये मैं डॉक्टर टू, उसको पता था कि ये भी कंसल्टेंट है, इसको ये भी डॉक्टर है, बात हो सकती है, बहुत ही गंदे तरीके से, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ही नहीं है कम्युनिकेशन की इसके, जो आप यहाँ की बात कर रहे हो, UK की बात कर रहे हो, उसमें सर आपको MD का एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें एक तो होते हैं आपके थ्योरी का एग्ज़ाम जिसमें नॉलेज खूब टेस्ट की जाती है, एक पूरा का पूरा एग्ज़ाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और वो इतना ज़रूरी है, अगर वो नहीं पास करते आपको आगे नहीं जाने दिया जाता, अगर आपने बोल दिया ना पेशेंट को कि मैं कह रहा हूँ ना ये ले ले, मुझे नहीं सुननी और बात, आप ख़त्म है, आप पास ही नहीं करोगे वो एग्ज़ाम, जब आपको वो एग्ज़ाम पास नहीं करोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो आपको सीखनी पड़ती है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो फॉरेन डॉक्टर्स होते हैं, सिर्फ इंडियन ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया से जो फॉरेन डॉक्टर्स होते हैं, वो एग्ज़ाम पास करने में इतना स्ट्रगल करते हैं, इसमें उसमें लैंग्वेज ही नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेट, जो आपने कहा ना बात सुनने की आदत नहीं है, हेडेक लेकर अगर आप मेरे पास आते हो ना, और कोई और आता है मेरे पास, तीन लोग हेडेक लेके आते हैं ना, तो आप आओगे तो आप अगर मुझे बोलो कि ना, मैं अगर आपको ना पूछूं, आपके मन में है कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं है, दूसरे बंदे के मन में यार हेडेक है कोई दवाई दे दो, तीसरे के मन में है मुझे ना स्कैन कराना अपना, ठीक है। अब ये तीनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरा काम है, मैं आपको क्लियरली पूछूंगा कि भाई प्रयास आपकी कंसर्न क्या है, हेडेक तो है और मैं देखूंगा क्योंकि ज़्यादा खतरनाक, मैं देख लूंगा बातों में, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपका कंसर्न क्या है, फिर आप फटाक से बताओगे मुझे डर लग रहा है कहीं ट्यूमर तो नहीं है, मैं पूछूंगा कैसा क्यों लग रहा है, आप बोलोगे कि मेरे ना चाचा ताया फलाने के हुआ था तो मुझे डर लग रहा है, उस कंसर्न को मैं एड्रेस करूंगा, या तो ये बताऊंगा कि नहीं लग नहीं रहा, लाइकलीहुड नहीं है, चांसेस नहीं है, अगर फिर भी नहीं मानोगे तो स्कैन के लिए भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो दूसरे का मैं उसी, ये जो चीज है ना, इससे आपको
एग्जैक्टली,
उसका एक और कारण है, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया में जाते हो ना, मैं तो यहाँ पे 30 पेशेंट देख लूँ ना, क्योंकि जिस ढंग से मुझे देखने पड़ते हैं, मैं थक के बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि यू हैव टू सी इट इन डिटेल, वहाँ तो 30 पेशेंट एक घंटे में निपटाने पड़ते हैं उनको, क्योंकि भीड़ इतनी है, रिसोर्सेज नहीं है, सरकार ने OPD बनाई नहीं है, डॉक्टर रखे नहीं है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये फिर क्या होता है, एक बार आप कॉम्प्रोमाइज हो गया ना शुरू क्वालिटी, वो फिर एंड यूजर, एंड जो बंदा है, डॉक्टर हो गया, नर्स होगी, जो भी हेल्थ केयर, उन्हीं के ऊपर गिरता रहता है। अगर आप उसमें रिसोर्सेज डालेंगे, सरकार डालेगी और ट्रेनिंग करेगी, तो ये सारा कुछ बदला जा सकता है।
एक और मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया में इतने C-section क्यों होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू UK, जैसे यहाँ पे अपने मिडवाइफ का होता है, मिडवाइफ जो बेसिकली इंडिया में दाई होती है, ठीक है, वो उसकी 4-5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में डिलीवरी कैसे करवानी है इसका एक्सपर्ट बनाया जाता है, एंड दे आर टॉट कि हाउ टू बी पेशेंट विद द,
यहाँ की बात कर रहे हो?
हाँ,
इंडिया में भी है मिडवाइस,
इंडिया में भी है, बट डिलीवरी जो होती हैं, मैंने पता नहीं कितनी सच्ची बात है, आप बताना कि उसमें उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि इंडिया में डॉक्टर डॉक्टर बन जाता है, लेकिन कहीं पे भी दे आर नॉट टॉट द प्रोसेस ऑफ ए नेचुरल बर्थ।
नहीं ऐसा
मतलब
तो नहीं है,
बुक्स में तो पढ़ाया जाता है, बट दे आर नॉट प्रैक्टिस्ड द प्रोसेस ऑफ ए नेचुरल बर्थ।
नहीं ऐसा तो नहीं है, इंडिया के नंबर्स ही बहुत बड़े हैं, तो
उसमें ये लिखा हुआ था कि भैया डॉक्टर को तो ऑपरेशन करना सिखाया हुआ है, उसमें पेशेंस नहीं होता, वो आएगा वो बोलेगा ऑपरेशन करना है तो बताओ वरना मैं जा रहा हूँ।
अगर प्राइवेट सेटअप में हो आप तो वो शॉर्टकट उसको माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रेगुलेशन इतने हैं नहीं, बहुत कम है, रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है,
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
हाँ मैं मानता हूँ। अरे आप
70% जो नेचुरल बर्थ हो सकते थे ना, दे आर डन सी सेक्शन, बिकॉज
और सी सेक्शन के
दे गेट मोर मनी फॉर दैट, दे गेट मोर मनी फॉर दैट एंड इट्स क्विक, इट सेव्स देयर टाइम।
और ये पेशेंट्स भी कई प्रेफर करते हैं वैसे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सबको, अगर आप, मैं वही कहने लगा था, अगर आपको थोड़ा उठा के देखना पड़ेगा, अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाओगे ना, वो जल्दी जल्दी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो फोकस होगा ना, जो जो तनख्वाह लेके कर रहे हैं, जिनको पैसे उससे नहीं मिल रहे हैं, वो करेंगे, जो अगर अगर करना होगा सिटीजन सेक्शन तो बोला जाएगा, उसमें चांस कम हो जाता है। ये जो प्राइवेट सेटअप हो जाता है, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाती है चीज़ें, इसमें बहुत कम लोग हैं जो साइंस को, और उसमें लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, जैसे आपने पहले बात की ना, पेनलेस हो, जल्दी से जल्दी हो, मैंने 5,000 दिए तो मेरा काम तो टॉप नॉच होना चाहिए। 5,000 से साइंस नहीं बदलती है ना, जो टाइम लगना है। आप तो सिजेरियन सेक्शन की बात कर रहे हो, मैं तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप पेशेंट के पास खांसी और जुकाम लेके जाते हो, इंडिया की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास ये सब बोलते हो, अगर सामने वाला डॉक्टर ने आपसे फीस ले ली 500 रुपये की, और वो बोल दे कि मुझे नहीं लग रहा कि ये इन्फेक्शन है, वायरल है, आप 4 दिन रुक जाओ, अपने आप ठीक हो जाए, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, आप ही बोलोगे कि क्या गधा डॉक्टर है यार,
500 ले लिए,
500 ले लिए, दवाई देनी है,
दवाई देनी है,
मैं यहाँ पे डेली कर रहा हूँ ये सब। वो वहां पे इंडिया में क्या होना करना पड़ रहा है डॉक्टर,
पैसे दे के आया तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा उसको,
वो क्या देंगे,
और कुछ नहीं तो विटामिन दे दो,
विटामिन दे दो, वायरल के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसका उसका खमियाजा क्या हो रहा है, इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बीमारियां जो 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 जरासीम है, जर्म्स है, वो बड़े हुए हैं। यहाँ पे हम एमोक्सिसिलिन से काम चलाते हैं, वहां पे जो बड़ी बड़ी तोप चीज है एंटीबायोटिक्स, वो भी नहीं काम कर रही है।
एक मैंने सुना था कि दिस इज द एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स जर्नी, मतलब इसके अलावा और कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी है आज तक, पिछले आई थिंक 20-30 साल पहले लास्ट एंटीबायोटिक्स
बना, हाँ,
अगर वो ये सारी एंटीबायोटिक जो हमारे सामने है ये काम करनी बंद कर दिया,
वी आर इन ट्रबल,
तो देयर इज नथिंग लेफ्ट,
वी आर इन बिग ट्रबल। और उसमें अपना इंडिया का जो, वी आर सिटिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब, ठीक है, हम तो कोविड की बात कर रहे थे ना, ये तो उससे भी पहले का प्रॉपर बैठे हैं, और कोविड में जो काम किया है, अब वायरल इन्फेक्शन, मतलब हम गला फाड़ फाड़ के काम खराब खत्म हो गया, पॉलिसीज जो बनी गवर्नमेंट की उसमें आया एंटीबायोटिक्स का कि दे दो, वायरल इन्फेक्शन है भाई, उसकी तो डेफिनेशन ही होती है कि वायरल इन्फेक्शन पे वो नहीं काम करेगा अनलेस बैक्टीरियल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कि एक बार जहाँ पे अगर हम उसको ठीक करना नहीं चालू करेंगे तो पेशेंट एंड ऑफ द डे जो लास्ट यूजर होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता, तो जो 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 गरीब होगा, जो आइसोलेटेड होगा, औरतों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि और भी बच्चों पर सबसे ज़्यादा, एल्डरली पे असर पड़ेगा, जो गरीब होगा उसे सबसे ज्यादा पड़ेगा, डॉक्टर्स भी सफर करेंगे, आपको तो पता ना डॉक्टर्स की क्या हालत की जाती है,
या डॉक्टर एक पिटाई का भी बहुत डर है यार,
मार देते हैं,
मारा पिटी किया,
कोई कोई कंप्लेंट कर देता, कोई एमपी आ गया, कोई और पॉलिटिशियन आ गया,
राजस्थान में एक लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया था ना,
हाँ हाँ
पिछले साल,
उसको इंस्टिगेट किया गया ना, कि वो मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरे दोस्त लोग जो हैं, मेरे पीयर्स लोग, वो बोलते हैं कि यार क्या करें, डर के काम करना पड़ता है, कोई कभी भी पीट के मार के, अब बताओ आप ऐसे हालात में काम कर रहे हो जब आपको पता है कि आपको सेफ काम करना है, इसलिए जब कोई सीरियस हो जाता है वो इधर भजाएंगे, वो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले से ओवरलोडेड है, आई मीन इट बिकम्स सच अ मेस। इसका इलाज अगर मैं बताऊं आपको, तो इलाज वही है कि आप हर चीज़ को तरतीब से करना शुरू करें, पैसा डालें, हेल्थ का बजट देखा आपने, नेग्लिजिबल है, रिसर्च का बजट देखा, मतलब जितना 5% तो बहुत हो गया, 1-1, 2-2, 3-3% GDP उसके पे बैठा है वो, और ये हमारी वो चीज़ है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डालना चाहिए, हम बिलियंस ऑफ पाउंड्स डाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स बहुत गलत काम करते हैं बहुत जगह पे इंडिया में, उसके कारण भी हैं, उसको ठीक भी किया जा सकता है, लोगों की भी जान बचाई जाती है, डॉक्टरों की भी जान साथ में बचाई जा सकती है। और मैं बताऊं, मेजॉरिटी डॉक्टर चाहते हैं कि उनको रिसोर्सेज मिले, उनको ट्रेनिंग्स आगे आगे मिलती रहें, उनको एमडी वगैरह करने के चांसेस मिलते रहें, स्पेशलाइज दे वॉन्ट, कोई भी नहीं चाहता जब आपने इतनी मेहनत की एमबीबीएस करने की, आगे भी यू नो सारा कुछ करते रहें, लेकिन वो सारा आपको अपना पेट भी पालना है, बच्चों को भी स्टोर वर्क करनी है, एविडेंस भी इकट्ठा करना है, तो इट बिकम्स चैलेंजिंग, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जो लोग इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा माहौल बनता जाता है। बट आई होप, मैं डॉक्टर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एथिक्स को तो फिर भी आप टॉप नॉच रखें।
आई थिंक
एंड ऑफ द डे आपको चैन की नींद तो आपको सोना ना यार, वो तो सैक्रिफाइस जैसे भी करने पड़े करें, लेकिन एथिक्स के साथ भी आप ठीक ठाक डिसेंट पैसे कमा सकते हैं।
एंड आई थिंक हमने जनरलाइज बहुत ज़्यादा कर दिया, सारे डॉक्टर नहीं होते, बहुत से ऐसे भी डॉक्टर मैंने भी देखे हैं, और बहुत से होंगे जो इनडायरेक्टली बिना बताए चुपचाप काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की। बट जो एज ए कॉमन मैन जो जब भी मैंने देखा है, जो मुझे दिखता है, वो मतलब सिर्फ काट रहे हैं बकरे सुबह से लेकर।
नहीं, उसमें देखिए डॉक्टर से एक्सपेक्ट भी कुछ डिफरेंट लेवल का किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ का सवाल है। जो मरीज होते हैं ना, वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, वो अपना दुखड़ा लेके आए होते हैं, वो सारा कुछ खोल रहे होते हैं, और सामने बंदा ऐसा बैठा हो जो एथिक्स को ताक पे रख के पैसे के लिए कुछ ये सब करता रहे, तो वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इफ़ देर इज़ वन थिंग आई कैन से टू डॉक्टर्स इज कि उनको भी पता है कि जो इलाज है ना वो पेशेंट सेंट्रिक होते हैं। हमारे इंडिया में अभी भी जो प्रैक्टिस है ना मेडिसिन की, वो डॉक्टर सेंट्रिक हो रही है, कि जो डॉक्टर समझता वो है। नो, इट इज़ द अदर वे राउंड। जैसे मैंने आपके पूछा ना कि आपकी परेशानी क्या, आपको क्या लग रहा है परेशान, दैट इज देन मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि आप ये ले लो, मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये बीमारी है, इसका ये तीन इलाज हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, आप बताओ लेना चाहोगे, देन यू आर मोर इंक्लाइंड टू हैव ट्रस्ट इन दैट। ये साइंटिफिक एविडेंस है इन चीज़ों का, और आप उस वो इलाज भी ठीक करवाओगे, आप दवाइयाँ भी खाओगे, आपको ट्रस्ट भी बनेगा डॉक्टर में। अगर मैं बोल दूँ ना, आपने आधा सेंटेंस बोला और मैं भाई ये ले ले यार, तो आप दो और डॉक्टर्स के पास जाओगे कि तो इतने मेरी बात ही नहीं सुनी।
हाँ, ये आपने सही बताया कि इंडिया में एक बार कोई किसी के भी बीमारी हो जाए ना, और कुछ सीरियस बीमारी हो जाए, तो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं फ़ोन करके, अरे वो बढ़िया डॉक्टर है उस चीज़ का, वो बढ़िया डॉक्टर है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बढ़िया डॉक्टर का कोई अच्छा या बढ़िया डॉक्टर, चलो ऑब्वियसली होते होंगे, किसी को जो कोई ज़्यादा अप टू डेट रहता है इन्फॉर्मेशन से, तो बट इतने धक्के खाते हैं ना लोग, और वो डॉक्टर कोई और गोली दे देगा, वो डॉक्टर कोई और गोली दे देगा, वो कोई और दे देगा, ठीक है, पता नहीं क्या
वही है बात, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इतनी बड़े लेवल की। सर, साइंस इतनी वास्ट चीज़ है ना, और रिसर्च इतनी तेजी से फैलती है ना, कि अगर आपने 5 साल पहले कुछ पढ़ा उसमें चेंजेस आ जाती हैं अभी तक, उसको कैसे अपडेट। और ये मैं, और जैसे यूके की बात करूँ, 80% जो कंसल्टेशन है ना वो जीपीज करते हैं, ठीक है, आप ये इमेजिन करो पूरे यूके में स्पेशलिस्ट के पास
जीपी क्या होता है,
जनरल प्रैक्टिशनर्स,
मतलब वो डॉक्टर के इक्विवेलेंट होता है।
हाँ हाँ, वो आप इंडिया में आप उसको एमडी मेडिसिन मान सकते हो, लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। जीपी जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो एक मतलब प्रेगनेंसी, नवजात शिशु से लेकर एल्डरली, ऑर्थोपेडिक्स, नेम अ थिंग,
जनरल डॉक्टर है, मतलब
हर चीज का आप ये कहिए कि काफी ऊपर की जो सतहें होती है ना वो उनको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में एक बहुत डीप में नहीं जाते, वो एक स्टेज उनको ये भी बताया जाता है कि ये आपके लिमिट है, इसके आगे अगर बीमारी जा रही है तो आप स्पेशलिस्ट के पास भेज दीजिए, लेकिन उससे ऊपर वही करते हैं, वो ही इन चीज़ों को डील कर लेते हैं, सुनते भी ढंग से हैं, बात भी करते हैं, फैमिलीज़ का भी मालूम होता है। एक ही डॉक्टर, मुझे आपका पता होगा कि आपकी फैमिली में क्या है, अगर जो सीनियर जीपी होते हैं ना उनके हाथों में वो बच्चा जन्मा भी होता है, और बच्चे को जो 40th बर्थडे पे उसका वो ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर बनती है इंडिया में, वो सब जीपी है ही नहीं इंडिया में, जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है। अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को बोलो कि मेरी हड्डी का दर्द ठीक करेगा, वो उसका काम नहीं है, उसका काम बड़ा स्पेशलाइज्ड है, उसके लिए उसको यूज़ करना चाहिए। तो वो सिस्टम तो बिल्कुल ही मिसिंग है, और आई टोटली एग्री, डॉक्टर जो है उनको अपनी तरफ से
आई थिंक
पेशेंट्स को, क्योंकि दुनिया वैसी बहुत दुखी,
थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए,
एम्पैथी काफ़ी जितनी रख लेंगे पेशेंट्स का भी फायदा, उसमें डॉक्टर्स का भी बहुत फायदा,
और थोड़े से अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या आ रहा है दुनिया में,
इफ दे कैन तो बहुत जरूरी
सिस्टम
है।
तो पता नहीं कब बनेंगे, बट आई थिंक दे शुड एटलीस्ट ट्राई फ्रॉम देयर एंड,
दे कैन मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स,
कीप अपडेटेड,
और लोगों को वोट ठीक करना चाहिए, बस इतना ही।
ओके।
और पीटना नहीं चाहिए डॉक्टर्स को।
हाँ नहीं सही बात है बिल्कुल। ओके थैंक्स गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय,
टेक केयर। पीटोगे तो नहीं मुझे अब।